अब हम जानेंगे गुप्तकालीन साहित्य तथा विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले साहित्य, ये हम जानते ही हैं और पहले हम बता चुके हैं कि मुख्य रूप से साहित्य के विकास के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रथम बार धर्म निरपेक्ष साहित्य की रचना इसी काल में हुई। मनुस्मृति को छोड़ के सारे जो स्मृतियां हैं वो इसी काल की हैं, और जो कायस्थ जाति का वर्णन आया है वो इसी काल में आया है याज्ञवल्क्य स्मृति में, और कायस्थ जाति का जो उद्भव है वो भी इसी काल में माना जाता है। अधिकांश पुराणों का अंतिम रूप से संकलन भी इसी काल में किया गया था। तो गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देख लेते हैं जो इस प्रकार है। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त ने लिखी थी, देवी चंद्र गुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी थी, मृक्षकटिकम शूद्रक चारुदत्तम भास ने लिखी थी, नीतिसार कामंदक ने, अवंती सुंदरी दंडिन ने। अब कालिदास की कुछ रचनाएं, ये हम पहले भी बता चुके हैं पर फिर एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्षियम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्सायन, हितोपदेश नारायण पंडित, स्वप्नवासव दत्तम भास। जो भगवत गीता है उसका अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ, और भागवत गीता ही दूसरी ऐसी रचना है जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो श्रेय है वो विल्किंसन्स को जाता है। न्यायावतार जो है इसी काल में रचित जैन ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। विलियम जोन्स जो कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं, इन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और भागवत गीता दूसरी ऐसी रचना है, दो रचनाएं ऐसी हैं जिनका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं, और ऋतु संहार मेघदूत कुमार संभवम और रघुवंशम ये काव्य संग्रह हैं इनके। स्मृतियों में याज्ञवल्क्य नारद कात्यायन बृहस्पति ये स्मृतियां जो थी इसी काल में हुई थी। गुप्त काल की जो तुलना है वो पेरिक्लीज युग यानी एथेंस के इतिहास से अगर उठाएं तथा एलिजाबेथ युग अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में से की जाती है। ये उनके अंग्रेजी इतिहास का जो स्वर्ण युग रहा होगा एलिजाबेथ युग, और एथेंस के इतिहास का पेरिक्लीज युग रहा होगा उससे तुलना की जाती है गुप्त काल की। तो ये हुआ साहित्य। अब जानते हैं विज्ञान के बारे में, विज्ञान ने उस वक्त क्या प्रगति करी। तो कुछ गणित खगोल विज्ञान और चिकित्सा में इस वक्त काफी उन्नति हुई। उस वक्त के प्रमुख जो लोग थे वो थे वराहमिहिर आर्यभट्ट भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त, ये कुछ प्रमुख लोग थे और भी थे उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर जो थे ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या यानी तारों वारों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। आर्यभट्ट जिनके बारे में सब जानते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर इन्होंने प्रकाश डाला। इन्होंने बताया कैसे सूर्य ग्रहण होता है और कैसे चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक नक्षत्र विज्ञान की पुस्तक की रचना की। ये ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, और उन्होंने गणित के ग्रंथ आर्यभट्टीय की भी रचना की थी। भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखा। भास्कर के तीन अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे वो हैं भास्कराचार्य, लघु भास्कर एवं भाष्य। अब ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने खगोलीय समस्याओं के लिए बीजगणित का उपयोग करना शुरू किया। अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की गई। आयुर्वेद के एक और ग्रंथ नवीनतम की रचना भी गुप्त काल में ही की गई। जो धन्वंतरी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, इन्हें काफी बड़ा वैद्य माना जाता था। गुप्तकालीन चिकित्सकों को शल्य शास्त्र के विषय में जानकारी थी। जो शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन जिसे कहते हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी। गुप्त काल में परमाणु सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया गया था। पाल कप्य गुप्त काल के प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। इन्होंने हस्ती आयुर्वेद की रचना की थी, जो पशु चिकित्सा के संबंध में अति महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अब धातु कर्म विज्ञान यानी मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल्स के बारे में चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ एक अन्य विज्ञान भी विकास हुआ, जो रसायन विज्ञान था। धातु कर्म विज्ञान एक तरह से रसायन विज्ञान ही हुआ। नागार्जुन को एक महान रसायन वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। रसायन विज्ञान से धातु कर्म विज्ञान के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई होगी। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ एक ऐसा जीवित स्मारक है, जिससे भारतीयों द्वारा 1500 वर्ष पहले धातु कर्म विज्ञान की गई प्रगति का पता चलता है। क्योंकि ये लोहे का स्तंभ है, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उदाहरण है उस समय की उन्नत रसायन विज्ञान का। उन्होंने कुछ धातु या क्या उसमें ऐसा मिक्स किया कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, 1500 साल के बाद भी। इसी प्रकार भौतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण ही गुप्त युग को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही वजह है।